हरे कृष्ण। सभी भक्तों का मैं हृदय पूर्वक स्वागत करता हूं। ये अध्याय का नाम है भगवान योद्धा, भगवान का योद्धा अवतार परशुराम। तो आज दुर्गाष्टमी में इसलिए ये श्लोक के तात्पर्य बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा मैं। आप इस तात्पर्य का जो निरूपण है लास्ट क्लास में वेदांत चैतन्य प्रभु ने क्लास दिया था ना, आप वही समझो कि दोनों अध्याय का जो श्लोकों का निरूपण है वही है कि जो हम सब जो भौतिक प्रकृति है वो हमारे लिए भोगने के लिए नहीं है, वो तो भगवान की है। इसलिए जो कोई भोगने की चेष्टा करता है वो पुरुरवा है। तो इसलिए सॉल्यूशन बताया था कि गुरु में आसक्त होना चाहिए। तो गुरु में आसक्त, हम तो लोग गुरु में आसक्त है लेकिन फिर भी प्रॉब्लम क्यों आता है? गुरु में आसक्त है लेकिन गुरु के नियम, गुरु में आसक्त होना मैंने यानी कहा कि गुरु के दिए वचनों में या नियम पालन करने में आसक्त होना चाहिए। अगर हम ऐसे होंगे ना तो हम निश्चित रूप से जो इसका जो हासिल करना है वो ज्ञान हासिल कर सकते हैं और निश्चित हम कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। आज दुर्गाष्टमी में नवरात्रि का दिन चल रहे हैं। दुर्गाष्टमी मतलब आज नवरात्र का आठवां दिन है। तो प्रभुपाद अक्सर कहा करते थे कि दुर्गा तत्व के बारे में हर भक्त को मालूम होना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ी गलती हम कर सकते हैं। इसलिए आज इसके उपरांत आज मैं दुर्गा का प्राकट्य कैसे हुआ और सब उसके बारे में डिटेल बताऊंगा। तो इसका आधार है देवी पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण और बहुत सारे पुराणों में कथा है। ये कथा है कि पहले हिरण्याक्ष का जो राक्षस है उनके अवतार में रुरु नामक एक राक्षस था और रुरु का पुत्र दुर्गम राक्षस था। तो दुर्गम राक्षस ने बहुत बड़ी तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि जैसे हिरण्यकश्यपु ने प्राप्त किया था ना, ऐसा ही उन्होंने किया था कि मृत्यु ना आए। लेकिन एक वो बोलने के लिए भूल गया कि वो कुमारी के हाथ से उनका वध नहीं होना चाहिए। ऐसा मतलब ये बोलने के लिए भूल गया कि कुमारी का नाम, उनके बाकी सब नाम लिया उन्होंने लेकिन कुमारी का नाम नहीं लिया। इसलिए कुमारी के हाथ से ही उनका वध होगा, होने वाला था। इसलिए वरदान प्राप्त होने के बाद वो बहुत छल कपट करने लगा, स्वर्ग में जाओ तो जाके भगवान या देवता लोगों को तकलीफ देने लगा। इसलिए सब देवता लोग एकत्रित हो गए और सब ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी विष्णु के पास गए और तभी से सब लोग एकत्रित होके उन्होंने सोचा इसका नाश तो करना ही पड़ेगा। इसका नाश करने के लिए सबने, सब देवी देवताओं ने अपना अपना शक्ति का कई भाग एकत्रित किया और एक कुमारी लड़की बनवा दिया। वो 10 भुजा वाली थी और ऐसा लड़की का प्राकट्य किया। वो सुनहरे रंग की थी, उनको लाल वस्त्र पहना था, अष्टभुजा में दस भुजा में दस प्रकार के आयुध दिया था उनके हाथों में, और ऐसे ऐसे करके उन्होंने जो दुर्गम राक्षस का है ये वध किया, और उसी वजह से उनका नाम है दुर्गा पड़ा। और ये कहानी आती है ब्रह्मवैद पुराण में और भागवत पुराण में भी कहानी आती है। भागवत पुराण में ये कहानी है कि ये जो दुर्गा कैसे भौतिक जगत में प्रकट हुई। वास्तव में जब कृष्ण भगवान लीला में सहाय करने के लिए पहले योग माया को बोले थे, और योग माया आई थी कहां पर आई थी, गोकुल में आई थी, यशोदा के नंद बाबा के घर में उन्होंने जन्म लिया था। लेकिन जैसे वसुदेव ने यहां का कृष्ण भगवान को वहां जा उन्होंने रख दिया, और वहां की लड़की वो लेके आए, और कंस मारते समय उनके हाथ में छूट गई और उन्होंने अष्टभुजा रूप धारण किया। तो वो जब गोकुल में थी तब वो योग माया थी, और जब मथुरा में आ गई ना तो वो महामाया बन गई। कैसे महामाया बन गई? जैसे कंस का, हमारे आचार्यगण बताते हैं कि जैसे कंस का स्पर्श होता तो महामाया बन गई। क्यों ऐसे? क्योंकि योग माया का जो कार्य है ओनली वो कार्य है कि कृष्ण की लीला में सहायता करना। और कैसे लीला में? जो कृष्ण के सम्मुख जीव है उनको ज्ञान विस्मरण देने के लिए योग माया कार्य करती है, लेकिन जो जीव कृष्ण के विन्मुख है ऐसे जीवों के लिए दग्ध करने के लिए वो कार्य महामाया ही कर सकती है। इसलिए कंस कृष्ण के विन्मुख था, कृष्ण कंस कोई श्री कृष्ण का भक्त नहीं था, कृष्ण के विरुद्ध कार्य करने वाला था, इसलिए कंस का हाथ का स्पर्श होते हुए ही योग माया महामाया बन गई। तो महामाया कोई अलग नहीं है, योग माया ही है, लेकिन योग माया का कार्य अलग है और महामाया का कार्य अलग है। जो योग माया भौतिक जगत में आती है और कृष्ण विन्मुख जीवों के लिए दग्ध करने का प्रयास करती है वही महामाया है। वो अष्टभुजा रूप धारण किया और भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया कि भौतिक जगत में लोग आपकी पूजा भौतिक कामना के लिए करेंगी और आपका नाम चंडिका बद्रिका अंबा कात्यायनी शाकंभरी ऐसे हजारों लाखों नाम है, तुक्काय ढगाय क्या क्या नाम है महाराष्ट्र में, तो ये सब देवी का विस्तार रूप है। लेकिन देवी एक्चुअली प्राकट्य ब्रह्मवैवर्त पुराण में ऐसा लिखा है कि ये जो देवी है ये देवी भगवान श्री कृष्ण के शरीर से प्रकट हुए हैं, लेकिन उनका क्रम जो है वो ऐसा है ब्रह्मवैवर्त पुराण में ऐसा दिया है कि पहले नारायण कृष्ण से नारायण प्रकट हो गए, नारायण से शिवजी प्रकट हुए, शिवजी से शिवजी ब्रह्मा जी, बाद में लक्ष्मी, बाद में सरस्वती और बाद में दुर्गा, ऐसा क्रम है। भागवत पुराण में कई जगह तो ब्रह्मा से शिव जी प्रकट हो गए, लेकिन ब्रह्मवैद पुराण में ऐसा है कि पहले नारायण प्रकट हो गए, नारायण के बाद शिव जी का नंबर है, शिव जी ब्रह्मा जी से बड़े है ब्रह्मवैद पुराण के अनुसार, और ब्रह्मा जी बाद में सरस्वती, बाद में लक्ष्मी और बाद में दुर्गा, ऐसा क्रम है। ऐसा उनका प्राकट्य है, और जैसा प्राकट्य हुआ तो सब लोगों ने उनको अपना आयुध दिया। शंकर भगवान ने अपने तेज से उनका मुख तैयार किया, यमराज ने मस्तक तैयार किया, विष्णु ने भुजाएं तैयार की, चंद्र ने स्तन तैयार किया, इंद्र ने कमर तैयार की, वरुण ने जंघा तैयार किया, पृथ्वी ने नितंब तैयार किया, ब्रह्मा ने चरण तैयार किया, और सूर्य ने पैर की अंगुलियां तैयार किया, प्रजापति ने दांत उनका तैयार किया, अग्नि ने नेत्र तैयार किया, संध्या ने भुवे तैयार की, वायु ने कान तैयार किया, शिवजी ने उनके हाथ में त्रिशूल दिया और लक्ष्मी ने उनके हाथ में कमल दिया, विष्णु ने उनके हाथ में चक्र दिया, प्रजापति ने उनके स्फटिक की माला माला पहनाई और वरुण ने उनके हाथ में शंख दिया। हिमालय ने उनके लिए बैठने के लिए वाहन दिया, वो सिंह, और ऐसे करके उन्होंने 10 भुजा, लेकिन ब्रह्म विराट पुराण में केवल 10 ही नहीं, उनकी अनंत भुजाएं, क्योंकि वो महाशक्ति आदि शक्ति है। योग माया ही है, लेकिन कृष्ण विन्मुख जीव है, उनको दग दग करने के लिए वो महामाया का रूप लेती है, और वास्तव में वो सब लक्ष्मी का ही विस्तार है, ऐसा उनका प्राकट्य हुआ है। तो ये नवरात्रि के में दिन है, खास करके ये नवरात्रि दिन में उनकी पूजा करते हैं तो वो अलग अलग कृपा प्रदान करती है। ऐसी कहानी है कि एक पिठत नाम का ब्राह्मण था, उसकी पुत्री का नाम था सुमति, और दोनों ही पिता पुत्री रहते थे, लेकिन पिता जो वो माँ दुर्गा का भक्त था और बेटी खेल कूदने में ज्यादा व्यस्त करती थी। पिता हमेशा बताता था कि अरे तेरा विवाह होने वाला है, माँ दुर्गा की पूजा करती रहने जाए, लेकिन वो भूलती थी। इसलिए एक बार उनके ऊपर सौंप देके पिता कहीं चले गए थे और उन्होंने पूजा दुर्गा की नहीं किया। तो क्यों नहीं किया, तो ऐसे पूछने के बाद हाँ मैं भूल गई। तो पिता बोले कि तेरे को मैं आशीर्वाद देता हूं कि तुझे ना कुष्ठ का पति मिलना चाहिए, कुष्ठ रोगी पति मिलना चाहिए। तो बाद में वो सुमति बोली कि अरे, क्योंकि पुत्री जो है वो पिता के अधीन रहती है, इसलिए आप पिताजी बोले है ना, मैं वही स्वीकार करूंगी, अभी आपको दुख नहीं होना चाहिए मुझे कुष्ठ का पति मिलने के बाद। आपके मुख से आया ना, तो मैं मुझे ऐसा ही पति मिलना चाहिए। तो ऐसे ही उनको जो सुमति को ऐसा ही पति मिल गया जो उनकी सेवा करने लगी। लेकिन वो सेवा करते करते एक दिन बहुत गंभीर होकर बैठी थी कि क्यों मुझे ऐसा, तभी उनके ध्यान में आया कि अरे क्योंकि मैं देवी की पूजा नहीं की इसलिए मुझे ऐसे मिल गया। तो अचानक उनकी देवी का स्मरण करने में अचानक देवी उनके सामने प्रकट हो गई और हे ब्राह्मणी बोले कि इतना दुखी होने का क्या कारण है। तो देखो कारण तो यही है कि मैं पिछले जन्म में कुछ बहुत भयंकर कर्म किया होगा, इसलिए मुझे कुष्ठ रोगी पति मिल गया है। वो देवी बोली कि चिंता मत करो, मैं लोगों की भौतिक कामना पूरी करने के लिए प्रकट हुई है, आपके मन में जो कोई कामना है तो मुझे बोल सकती है। तो अगर वो बोली कि अगर आपको मुझे देना है तो मेरे पति का कोड निकाल दीजिए, इसलिए उन्होंने खुद देवी ने ये नवरात्र का विधि बताया कि अश्विन मास के शुक्ल पक्ष के पहले दिन से मैं खास करके प्रकट होती है। किसलिए प्रकट होती है, जो लोक पहले भगवान का जन्मदिन होता है, बलराम जी का होता है, राधा का जन्म होता है, इसी जन्म अवधि पर भी वो भगवान के सम्मुख नहीं होते, इसलिए मैं उनको शिक्षा देने के लिए कि अभी तो मेरी पूजा करके धीरे धीरे मैं आपको भगवान की भक्ति दे सकती हूं, इसलिए नवरात्रि के दिन मेरी पूजा करना चाहिए, मेरी पूजा करने के बाद मैं भगवान के पास मैं भेज सकती हूं। ऐसी देवी प्राकट होके बोली और उन्होंने नवरात्रि का विधि बताया और सब कलर भी बताया कि कैसे कैसे मैं प्रकट होती है किस। तो पहले दिन शैलपुत्री नाम है उनका, तो उसका रंग है करड़ा, करड़े रंग की वस्त्र पहनती है वो। उसी दिन करड़े साड़ी उनको अर्पण किया तो हमें क्या मिलता है, ग्रे, ग्रे मतलब जो, हाँ, वो हमें शांति बल और प्राप्त होता है। तो शैलपुत्री की कहानी है कि वो दक्ष की पुत्री है सती, तो शिव जी का अपमान हुआ इसलिए योग विद्या से अग्नि प्रकट हो गए, उन्होंने उसने अपना शरीर भस्म कर दिया और बाद में हिमालय की पुत्री के रूप में प्रकट हो गई, इसलिए उनका नाम शैलपुत्री है। तो वो दुर्गा का पहला रूप है नवरात्रि के दिन में, तो इसलिए वो ग्रे कलर का उनको साड़ी ऑफर किया तो हमें क्या मिलता है, शांति और बल मिलता है। दूसरा दिन है, उनका नाम है ब्रह्मचारिणी, उन्होंने नारंगी वस्त्र पहना है, नारंगी वस्त्र उनको ऑफर किया तो हमें शक्ति और आनंद मिलता है। और ये तपस्विनी है, उनको आठ भुजाएं नहीं है, उनको दो ही भुजाएं है, एक भुजाएं में दाएं हाथ में कमंडल लिया है, दाएं हाथ में जपमाला है और बाएं हाथ में कमंडल है। और ये तपस्विनी है, क्यों तपस्या करती है, क्योंकि शिवजी उनको पति चाहिए, इसलिए बहुत बड़ी 1000 साल तपस्या की थी। और उनका नाम ब्रह्मचारिणी है, ब्रह्मचारिणी मतलब तपस्विनी है। तो ये नवरात्रि की दिन हमने अगर तपस्या की तो वो हमें क्या देती है, वो हमें देती है कि कृष्ण को पाने के लिए हमें शक्ति प्रदान करती है, वो दिव्यता प्रदान करती है हमें। और भक्ति चलाते समय हमें बहुत बड़ा उत्साह आनंद प्राप्त करती है, प्रदान करती है। तीसरा नाम है चंद्रघंटा, उन्होंने सफेद वस्त्र पहना है और वो दीनता का प्रतीक है। अगर उसी दिन सफेद वस्त्र उनको अर्पण किया तो हमें मिलता है कि हमें प्रार्थना करने की संवेदना शक्ति मिलती है और हमारा मूड है वो भगवान के समीप होने में बहुत बड़ी सहायता मिलती है। तो चंद्र घंटा का नाम की कहानी है कि जब इस समय वो पार्वती का विवाह होते समय सब लोगों ने उनको कुछ न कुछ दान किया था, चंद्र ने उनको एक घंटा अर्पण किया था और उन्होंने मस्तक पे लगा दिया था। तो उनको ने आठ भुजा है, वो सिंह के ऊपर बैठी है और खास करके जो उनके विवाह में जो कोई डिस्टर्ब करने वाले है उन लोगों को, असुर लोगों को नष्ट करने का काम वो करती है। चौथे दिन का नाम है कुष्मांडा, वो लाल रंग की साड़ी पहनती है। वो कुष्मांडा का कार्य है कि भगवान ने ये सब ब्रह्मांड निर्मित होने से पहले जब अंडा का आकार दिया वो किसी शक्ति से दिया, इनके शक्ति से दिया, कुष्मांडा ने ब्रह्मांड को अंडा जैसा आकार बना दिया, इसलिए उनका नाम कुष्मांडा हो गया। और वो लाल रंग की साड़ी पहने वो हमको प्रेम शक्ति और तीव्रता प्रदान करती है। पांचवा नाम है स्कंद माथा, ये भी अष्टभुजा की है, उनका साड़ी है आकाश कलर का जो नीला ब्लू कलर का है, वो भी हमें दिव्यता प्रदान कर दिया है। स्कंद माता का रूप है कि उनके गोद में कार्तिकेय बैठा है, वो उनका पुत्र है और इनका कार्य है दुष्टों का नाश करना। और छठी रूप में है कात्यायनी, इनका कलर है साड़ी का कलर पीला कलर का है, यह हमें तेज और शक्ति प्रदान करती है। तो ये कात्यायन ऋषि के घर में पुत्री के रूप में इन्होंने जन्म लिया और इनका भी कार्य है असुरों का मर्दन करना। सातवा नाम है काली माता, तो ये खास करके जो कृष्ण के उन्मुख जीव है इनका कार्य किसी को भक्ति देने का नहीं है, केवल दंड देने का कार्य है, बाकी सब देवी का है ना, साथ साथ में भक्ति भी देती है, केवल काली माँ है वो केवल दंड देने का कार्य करती है। और आठवां का जो आज का दिन है महागौरी, जो उनका जो साड़ी का कलर है वो जंभाई कलर है, वो हमें बुद्धि प्रदान करती है और महत्वाकांक्षा दृढ़ निश्चय प्रदान करती है। और नौवा जो कल है उनका नाम है सिद्धदात्री, उनका कलर है, साड़ी का कलर है मोर पंखी, और हमें सिद्धि अष्ट प्रकार की सिद्धि कला गुण प्रदान करती है। तो ऐसे ऐसे प्रकार का ब्रह्मवीर पुराण में सब डिटेल बताया है, आप पढ़ सकते हैं। लेकिन प्रभुपाद खास करके बोले हैं कि कौन है दुर्गा, दुर्गा तत्व हमें क्यों जानना चाहिए। इसका प्रमाण है कि ब्रह्म संहिता में खास ब्रह्मदेव बोलते हैं कि सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा चाएव यश्य विवर्ति भुवनानि दुर्गा इच्छाण रूपमि यश्य चेष्टते सा गोविंदम आदिपुरुषम तमहम भजामि। ये कौन है? सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा, जो भगवान कृष्ण है इन्हीं के द्वारा सृष्टि बनाते हैं, स्थिति मतलब पालन करते हैं, और इन्हीं के द्वारा प्रलय भी करते हैं इन्हीं की शक्ति के द्वारा। अरे इसका ये सुन के कई लोग तो ऐसे सोचते हैं कि अरे ब्रह्मा जी तो सृष्टि का रचना की और विष्णु ने पालन किया और शिव जी का तो काम सहार करना है, ये बीच में कहां से आ गई, इन्हीं का नाम कैसे दिया है कि सृष्टि स्थिति प्रलय इन्हीं के द्वारा करते हैं, और इन्हीं के द्वारा करते हैं तो ब्रह्मा जी को क्यों निर्माण किया, शिव जी को क्यों निर्माण किया, और विष्णु तो पालन करते हैं और शिव जी तो सहार करते हैं, मतलब ब्रह्मा जी बड़े का दुर्गा बड़ी, शिव जी बड़े का दुर्गा बड़ी, कौन बड़ा है। लेकिन इसमें दिया है कि वो आदि शक्ति है, इन्हीं के द्वारा स्थिति प्रलय और सृष्टि ये सब भगवान इन्हीं के द्वारा करते हैं। तब तो ये बड़ी हो गई, लेकिन ये बड़ी नहीं है, इनका क्रम है लक्ष्मी के सरस्वती की बाद में इनका क्रम है। ब्रह्मवीरम के पुराण में पहले नारायण प्रकट होते हैं, नारायण के बाद शिवजी होते हैं, शिवजी से ब्रह्मा जी होते हैं, ब्रह्मा जी के बाद सरस्वती होते, बाद में लक्ष्मी होती है, बाद में दुर्गा होती है, ऐसा क्रम है। बाद में सब अंशांश जीव सब प्रकट होते हैं, ये सब बड़ा महानता का क्रम ऐसा है। तो ये बहुत बड़े ख्याल रखने की बात है। तो इच्छानुरूप, और ये भगवान के इच्छानुसार ही कार्य करती है। ये कौन है? भगवान की छाया है, मतलब हमारी छाया है, हमारे सामने ऐसे गिरने को देखने को मिलती है, हमने आप ऐसा हाथ हिलाया तो छाया भी हाथ हिलाते समय देखने को नजर मिलता है। इसी प्रकार ये भगवान की छाया है और कोई नहीं है, भगवान के इच्छा अनुसार ये कार्य करती है। मतलब ये कौन है? ये संपूर्ण सृष्टि ये जेल के समान है, एक दुर्ग के समान है, और इसका नियंत्रण करने की शक्ति है भगवान ने इनके ऊपर दिया है। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसा एरोड़ा जेल है, और जेल के कुछ जेल में जेलर है, इसी प्रकार ये सब ब्रह्मांड है, ये 14 लोकों का ब्रह्मांड है, केवल ये ब्रह्मांड नहीं, पूरा 14 लोकों का अनेक ब्रह्मांड है, अनेक ब्रह्मांडों को काम इनके ऊपर है, इनको नियंत्रित करने का काम है वो दुर्गा देवी का है। मतलब यह है कि कैसे नियंत्रण कर दिया है, वो खुद नियम नहीं बताती हुए, जस भगवान का नियम, भगवान ने जो नियम दिया है उसको बरकरार रखती है, उसको बनाए रखती है। जो मतलब क्या है कि भगवान ने जो ये सृष्टि का पालन सहार करने का जो नियम दिया है, उन्हीं के नियमों के द्वारा ही सृष्टि का सब नियंत्रण करती है। तो अक्सर हम बोलते हैं कई बार कि अरे वो प्रकृति कितना कठोर है, निर्दय है, क्रूर है, लेकिन प्रकृति कठोर नहीं है, निर्दय नहीं है, प्रकृति मतलब ये दुर्गा बहुत बड़ी दयालु है। हम बार बार उनके ऊपर ऐसा ठोकते हैं, आरोप करते हैं, प्रत्यारोप करते हैं कि प्रकृति कितना निर्दय कठोर है, लेकिन वास्तव में वाकई में निर्दयता तो वो भगवान से आई है। निर्दयता ये कठोर नियम है, वो नियम जो है भगवान का है मुख्य रूप में। और क्यों नियम भगवान ऐसे कठोर क्यों बने हैं कि जीव उनमें खोया उनके ऊपर। दुर्गा का नियम है उन्होंने खुद नहीं बनाया है, भगवान ने जो क्रूरता का नियम बनाया है उन्हीं के नियमों को बरकरार रखती है वो, और वो पालन करती है सृष्टि का। और ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, शिव जी सहार करते हैं और विष्णु पालन करते हैं, और ये नियंत्रित करते हैं। मतलब क्या है, मतलब ऐसा है कि जो दुर्गा है ये तीन ही गुणी के द्वारा, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, इन्हीं के द्वारा ये सृष्टि का नियंत्रण करते हैं। मतलब है ऐसा है कि रजोगुण आने के बगैर तो ब्रह्मा जी सृष्टि नहीं करते, तमोगुण आने के बिगाड़ तो शिव जी सहार नहीं कर सकते, और सत्वगुण आने के बिगाड़ तो विष्णु पालन नहीं कर सकते। मतलब इन्हीं के शक्ति द्वारा करते हैं, लेकिन इनसे वो बड़े हैं, ये बड़ी नहीं है। वास्तव में उन्हीं का नियम, विष्णु का ही सब नियम है, लेकिन ऐसा क्रम दिया है। बहुत बहुत जगह कर पुराण पढ़ के लोग यही गलती कर किया है लोगों ने, ब्रह्म पुराण में देवी पुराण में ये सब पढ़ा है, लेकिन उन्होंने ऐसी गलती किया है कि ये सब सुनने के बाद वो देवी के भक्त बन गए। लोगों को समझ में नहीं आता है कि भगवान ने मधु कैटभ राक्षस का वध किया कैसे किया, पहले इन्हीं के द्वारा, इन्हीं माया के द्वारा उनको, मधु और कैटभ को विमोहित किया देवी शक्ति के। कौन विमोहित किया, देवी ने विमोहित किया, और बाद में भगवान ने उनको मार दिया। मतलब विमोहित करने का काम देवी ने किया, मतलब देवी बड़ी हो गई, नहीं ऐसा नहीं है। जो विमोहन का जो गुण है वो वास्तव में भगवान से ही भगवान ने केवल उन्हीं के पास डिपार्टमेंट दिया है वो चलाने के लिए, क्योंकि कृष्ण रूप में भगवान जो है, कृष्ण रूप में विष्णु रूप में जो ऐसा तमोगुण का रजोगुण का कार्य नहीं कर सकते, इसलिए देवी को निर्माण किया, उनके हाथ में त्रिशूल दिया और रजोगुण तमोगुण दिया और उन्हीं के द्वारा ब्रह्मा जी को रजोगुण अर्पित किया, इसलिए ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, शिव जी ने सहार करने का काम कर रहे हैं। ऐसा सृष्टि का क्रम है, वो बड़ी नहीं है, लेकिन वो आदि शक्ति है, वो भगवान की एक शक्ति है। ब्रह्मवेत्मण की दैवी ऐसी गुणमयी मम माया दुरतया मामे ये प्रपदन्ते मायाम एताम तरंती ते। ये कौन है, ये दैवी ऐसी मतलब अलौकिक गुणों की है, वो साधारण गुणों की नहीं है, वो मेरी शक्ति है। दुर्गा जो है, ये प्रकृति है जो दुर्गा, वो गुणमयी है, ऐसी भौतिक गुण वाली नहीं है, वो गुणमयी मतलब दैवी अलौकिक गुण की है। इनको पार करना बहुत कठिन है, कौन पार कर सकता है, माया मिताम तरंती, जो मुझमें शरण आता है वही पार कर सकता है। केवल देवी को शरण जाने के बाद वो देवी को पार नहीं कर सकते, ये भगवान का नियम है। और ये नियम जो फॉलो करते हैं इसलिए भगवान क्रूर बने हैं एक दृष्टि से, और ये विष्णु रूप में कृष्ण रूप में क्रूर नहीं बन सकते, इसलिए देवी का क्रूर बनने के लिए भगवान ने ही देवी का रूप धारण किया है। एक्चुअली ऐसा है, तो बहुत बार हम बोलते हैं कि माया की सेवा, और माया की सेवा मतलब प्रकृति की सेवा है। बहुत बार बोलते हैं कि अरे आप तो माया में है, एक किसी को भक्त बोला कि आप तो माया में, तो बोलेगा माया में तो क्या प्रॉब्लम है, ये तो दुर्गा की पूजा है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो दुर्गा की पूजा नहीं है। दुर्गा को महामाया बोला है, माया नहीं, महामाया और माया में डिफरेंस है। माया किसको बोलते हैं? माया जो जो है ही नहीं, मतलब उसका अस्तित्व है ही नहीं। और महामाया बोलते हैं कि वो माया को नियंत्रित करती है, मतलब पंच महाभूत है और मन बुद्धि अहंकार अष्टद प्रकृति है, ये भिन्न है, महामाया से भिन्न है वो। उनका काम है, महामाया का काम है कि इनको नियंत्रित करना, मतलब ये शरीर है, ये पंच महाभूतों को बनाए, इसके अंदर सूक्ष्म तत्व है मन बुद्धि अहंकार, इनको नियंत्रित करने का काम वो करती है। मतलब इनकी सेवा, मन की सेवा मतलब उनकी सेवा नहीं है, दुर्गा की सेवा नहीं है। मन की सेवा करना मतलब माया की सेवा करना है, और दुर्गा की सेवा अलग है। ये दुर्गा ये प्रकृति नहीं है, प्रकृति और दुर्गा का ये रिलेशन है कि प्रकृति जो है वो उन्होंने बनाया है, ब्रह्मा जी ने बनाया है, उनका नियंत्रित करने का काम जो है वो दुर्गा है, दुर्गा का काम है। और माया किसको बोलते हैं? ये प्रकृति मतलब जो ये जो मन बुद्धि अहंकार है वो माया का, वो माया है। ये मन की सेवा करना ये माया सेवा है, क्योंकि मन का कोई वास्तव है ही नहीं है। केवल जीव को प्रताड़ित करने के लिए ये दुर्गा ने ऐसा कुछ अपना शक्ति का विस्तार करके ये तत्व तो बनाया है। और ये समझने के लिए बहुत इजी है, इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं कि इसको समझना चाहिए। इसके समझने के अगर ये समझेगा तत्व तो हम लोग, तब हम गलती नहीं करेंगे, नहीं तो ब्रह्म मुहूर्त पढ़ने दो, देवी पुराण पढ़ने दो, पढ़ने के बाद ऐसा ही वो अंत में उसका ऐसा ही निष्कर्ष होता है कि वो आदि शक्ति है, सिर्फ भगवान से बड़ी है वो। इसलिए तो भगवान ने महाभारत में कई जगह कुछ कार्य संपन्न करने के लिए अर्जुन को बताया था कि पहले दुर्गा की पूजा करो, तब कार्य संपन्न हो जाएगा। तो वैसे उधर मेरे खुद की पूजा करो नहीं बोले वो, क्यों नहीं बोले? अगर उसको शक्ति संपन्न करना है, कार्य सिद्ध करना है, तो दुर्गा की पूजा करो। लेकिन ऐसा नहीं है, उन्होंने जो भौतिक कामना है, भौतिक कामना पूरी करने के लिए दुर्गा की पूजा करना चाहिए, ऐसा उन्होंने बताया है। किसी के मन में पुत्र का मोह है, किसी के मन में कुछ धन का मोह है, किसी अनेक अनेक लाभ प्राप्त करने के लिए, अनेक लाभ प्राप्त करने के लिए देवी की पूजा करनी पड़ती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वास्तव में अंत में भगवान ही देते हैं वो फल, लेकिन वो निमित्त मात्र बना दिया है। क्योंकि जीव जो जन्म लेता है वो बहुत प्रकृति के देखने बहुत बहुत मोहित होता है, वो डायरेक्ट भगवान की सेवा में आकृष्ट नहीं होता है। उनके हृदय में भौतिक कामना बार बार आती है, और भौतिक कामना की पूरी करने के लिए ये रूप में, कृष्ण रूप में, विष्णु रूप में भगवान नहीं कार्य कर सकते। अगर कर सकते थे, लेकिन विश्वास नहीं दिला सकते कि अगर कोई विष्णु की भक्ति करेगा और गारंटी है कि वो कार्य वो संपन्न होगा ही, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि भगवान क्या देखते हैं? भगवान उनकी नीड देखते हैं। भगवान ये नहीं देखते कि उनका इच्छा क्या है। इच्छा के अनुसार भगवान चलते नहीं, भगवान चलते हैं नीड के अनुसार। इसलिए इच्छा तो अनंत जीवात्मा है, इसलिए अनंत इच्छा के लिए, तृप्ति करने के लिए देवी का निर्माण किया है। और देवी इच्छा प्रदान करती है, कैसे प्रदान करती है? पूरा नहीं प्रदान करती, वो थोड़ा थोड़ा प्रदान करती है, और थोड़ा प्रदान करने के बाद वो अधूरा रहता है, और अधूरा इसलिए रखती है कि एक दिन पूरा इच्छा प्राप्त करने के लिए अल्टीमेटली उनको भगवान विष्णु के पास ही जाना पड़ेगा। इसलिए वो कोई भी इच्छा अधूरा प्राप्त कराती है, कोई भी फल अधूरा देती है। किसी को भी धन चाहिए ना, तो पूरा धन नहीं दे सकती हो, कई समय तक दे देगी, बाद में छीन लेगी, ऐसा करेगी और फिर वो तड़फड़ाएगा, फिर तिलमिला उठाएगा, फिर धन प्राप्ति का कोशिश करेगा और फिर अधूरा ही देगी। लेकिन अंत में उसको महसूस होगा कि ये मुझे दुख क्यों हो रहा है, तो बाद में उसको पता चला कि अल्टीमेटली भगवान की भक्ति करना चाहिए। इसलिए देवी इसी तरह हर जीव को प्रताड़ित करती है, हर उनका जो नियम है कि जो भौतिक संपदा भी देती है वो, लेकिन आधा देती है, पूरा देती नहीं, थोड़ा देती है उसके बाद छीन लेती है, कहीं पूरा देती है उसके लिए सेटिस्फेक्शन नहीं देती है, वो ऐसे प्रताड़ित करती रहती है, क्योंकि एक दिन वो भी जीव भगवान का भक्त बने। उनका कार्य यही है कि एक दिन जीव को भगवान का चरण अर्पित करना है उनको, वो बहुत खुश होती है। इसलिए कहानी गोपति प्रभु ने बताया था कि चंडीदास की कहानी है। चंडीदास माँ दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त था और बहुत बड़ा अमीर आदमी था वो, उनके सब बहुत बड़ा, उनके बंगलों के पास में बहुत बड़ा गार्डन था, सब 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 हरी भरी का सब जमीन जायदाद सब था उनका। और लेकिन उनका जो भाई है वो गरीब था, क्यों? क्योंकि वो विष्णु का भक्त था, क्योंकि विष्णु है वो इच्छा के अनुसार देते नहीं, उनकी नीड के अनुसार देते हैं। इसलिए वो अमीर था, जीव की नीड नहीं, इसलिए उनको ब्रदर को, उनको भाई को गरीबी रखा था उनको। और वो रहते थे झोपड़ी में और चंडीदास रहता था बंगलों में। एक दिन क्या हुआ, एक दिन उनके पास जो उनका भाई था उनके पास एक विष्णु का शालिग्राम शिला था। एक दिन उनके मन में आया कि अरे भाई के बगीचे में तो एक दिन बहुत आड़े बड़े बड़े अच्छे अच्छे फूल खिले थे, तो क्यों ना मेरे शालिग्राम को अर्पित किया जाए। इसलिए वो फूल को देख के बहुत तरसता था, अरे अगर मैं कैसा जाऊं उधर, क्योंकि मैं जाया बिना परमिशन के जाया था और परमिशन लिया तो वो परमिशन तो नहीं देगा, इसलिए वो बहुत तरसता तरसता। बाद में ऐसा ही निश्चय किया उन्होंने कि मन में उनके वो बगीचा का, चंडीदास के बगीचे का उन्होंने फूल तोड़ दिया और अपने शालिग्राम को अर्पित किया। और चंडीदास आने के बाद वही फूल चंडीदास ने, उनको ऐसा लगा कि अरे ये फूल किसी को तो पहले अर्पण हुआ है, लेकिन होने दो। उन्होंने वो फूल तोड़ दिया और माँ दुर्गा को, चंडी को अर्पण किया। और चंडी को अर्पण करने के बाद चंडीदास के सामने अभी तक दुर्गा देवी कब्र प्रकट नहीं हुई थी, उसी दिन प्रकट हो गई और बोली कि अरे चंडीदास मैं तुझ पर आज बहुत प्रसन्न हुई। चंडीदास बोले क्यों, ऐसा क्यों हो गया कि मैं तो आपकी हर दिन आपकी सेवा करता हूं, आज ही आप क्यों ऐसे बोल रही है कि मैं बहुत प्रसन्न हूं। वो बोली कि आज मुझे आपने सही रूप से प्रसन्न किया आज में, क्यों ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि आपने जो गार्डन का फूल जो दिया ना वो विष्णु का महाप्रसाद था। क्योंकि कैसा, क्योंकि आपके भाई ने वो शालिग्राम, विष्णु का जो शालिग्राम रूप है ना, वो शालिग्राम को अर्पित किया था, वो शालिग्राम का विष्णु का महाप्रसाद आज मुझे अर्पण किया, इसीलिए मैं आज बहुत संतुष्ट हूं। और चंडीदास तभी उनको मालूम हुआ कि वास्तव में देवी की इच्छा क्या है। तो चंडीदास बाद में बोले कि आपकी अगर परमिशन है तो मैं भी विष्णु की पूजा करूं क्या, तो हाँ क्यों नहीं, जरूर करो। तभी से चंडीदास भगवान विष्णु की पूजा करने शुरू किया उन्होंने। और ऐसे बोल देते हैं कि वही चंडीदास जो उडुपी कृष्ण है, उडुपी कृष्ण के जो कनक दास है, दूसरे जन्म में कनक दास के रूप में अवतरित हुए और कनक दास के रूप में अवतरित होने के बाद उन्होंने भगवान की बहुत बड़ी स्तुति की। तो ये कहानी के पता चलता है कि वास्तव में देवी को क्या चाहिए, देवी किस चीज की मांग करती है। उनकी डायरेक्ट पूजा करने के बाद इतनी देवी प्रसन्न नहीं होती, लेकिन भगवान विष्णु या कृष्ण की पूजा करने के बाद वो बहुत प्रसन्न होती है, जो चाहे हमें वो देती है। और अल्टीमेटली जो गोलोक है वो भी धाम प्रदान करने में हमें शक्ति प्रदान करती है। ये नवरात्रि के 9 दिन है वो इसीलिए है कि भगवती शक्ति है, वो भगवान भगवान का प्रेम, भगवान का चरण प्राप्त करने के लिए ये 9 दिन में हमें विशेष शक्ति प्रदान करती है। इसलिए उसी दिन जो कृष्ण का स्मरण करने हेतु गर्भानुत्ति किया जाता है, और उसी कलर का जो दुर्गा को अर्पण किया है ना, पहले दिन करड़ा ग्रे कलर का, दूसरे दिन सफेद कलर का, अलग अलग कलर का है, वो कलर का कपड़ा पहनते हैं लोग कि कृष्ण का स्मरण हो जाए, और ऐसे गर्भानुत्ति किया जाता, दांडियानुत्ति किया जाता है। ये परंपरा है, आज भी गुजरात राजस्थान में चलती है, लेकिन आज तो केवल उन्हीं के नाम से इंद्री तृप्ति कर रहे लोग। दुर्गा प्रसन्न होने के बाद ज्यादा क्रोधित होती हो गई। ये कहानी है कि दुर्गा जो है वो भगवान की आदि शक्ति है, और भगवान की इच्छा के अनुसार ही कार्य करती है। देवी ऐसी गुणमयी ममदा माया दुरतया, ये अलौकिक गुण की है, गुणमयी है। मैया अध्यक्षण प्रकृति स्वेते सचराचरम, कि भगवान की अध्यक्षता ही कार्य करती है, उन्हीं के नियमों द्वारा, खुद के नियमों के द्वारा ये सृष्टि चलाती नहीं है। जो भगवान ने नियम बनाए हैं, कई जगह भगवान ने बहुत कठोर नियम, जो मृत्यु कितना कठोर है, कई कई लोग कैसे मरते हैं, पानी में मरते हैं, आगड़ी में मरते हैं, विमान से गिरकर मरते हैं, कैसे बहुत हालात से मरते हैं, लेकिन बाद में मरने के बाद हमें महसूस होता है कि बाप रे, ये भौतिक जगत कितना कठोर है, जो देवी है ये प्रकृति कितना कठोर है, लेकिन एक कठोर नियम है वो देवी का नहीं है, वो नियम भगवान का है। देवी बस वो भगवान की नियम का बरकरार रखती है, वही नियम बनाए रखती है। हम कभी भी उनके ऊपर ये पत्थरारोप नहीं करना चाहिए। देवी तो हमें सहायता हमेशा करती है, इसलिए आज दुर्गा तत्प्रपात बोलते हैं कि दुर्गा तत्व मालूम होना चाहिए कि देवी को हमेशा आदर रखना ही चाहिए, और किसी भाव से आदर रखना चाहिए, जैसे भगवान श्री राम ने रखा था। श्री राम ने देखिए देवी की पूजा की थी किसी वजह से, कि उनकी पूजा करने के बाद वो शिवजी प्रसन्न हो जाएंगे, और शिवजी का रावण भक्त था, रावण को मारने के लिए शिवजी बीच में न आए, इसलिए पहले दुर्गा की पूजा की, बाद में शिवजी की, इसलिए रावण को मारा जाए। क्योंकि हेतु जो है ना, हेतु दुर्गा पूजा का हेतु बहुत बहुत बड़ा ऊंचा हेतु चाहिए, कि हमारे हृदय में जो काम क्रोध रूपी जो रावण है उनको मारने के लिए दुर्गा की पूजा करना चाहिए, दुर्गा को रिस्पेक्ट देना चाहिए। कैसे रिस्पेक्ट देना चाहिए, कि भगवान का चरण कमल हमें प्राप्त होना है, और भगवान का चरण कमल प्राप्त होना है, अगर वो भगवान का चरण प्राप्त क्रम हमें करना है तो ये राक्षस को पहले मारना पड़ेगा, और राक्षस मारने के बाद ही भगवान का चरण कमल प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए उसी उद्देश्य को दुर्गा की पूजा करना चाहिए, दुर्गा को आधा मतलब रिस्पेक्ट देना चाहिए। जैसे श्री राम ने किया था, अर्जुन ने भी दुर्गा की पूजा की, चंडीदास ने की, बहुत सारे लोगों, गोपी लोगों ने दुर्गा की पूजा की, किसी वजह से की थी कि कृष्ण हमें प्राप्त हो जाए, कोई भौतिक उद्देश्य नहीं था, कृष्ण की कामना के लिए ही दुर्गा की पूजा, मतलब दुर्गा पूजा का उद्देश्य है कि हमारे को कृष्ण का चरण कमल एक ना एक दिन प्राप्त हो जाना चाहिए। इसी उद्देश्य अगर हमने दुर्गा की पूजा की तो दुर्गा देवी बहुत प्रसन्न होती है। दुर्गा वास्तव में कौन है, वो आदिशक्ति है, पार्वती है, पार्वती क्या अनेक रूप है वो, और वो ये नवरात्रि के दिन में खास करके जो बलराम जयंती हुआ, राधाष्टमी हुआ, जो जीव भगवान इतना जन्मदिवस होने पर भी कृष्ण के सम्मुख नहीं, कृष्ण के भक्त बने नहीं, वो दुर्गा माता एक तो अभी उनका दिन आ गया कि अभी वो शस्त्र हाथ में लिया कि जो जीव कृष्ण के उन्मुख है उनको प्रताड़ित करके वो कृष्ण के सम्मुख बना देती है। इसलिए उन्होंने आज महागौरी है, ये महागौरी मतलब आज ही उन्होंने महिषासुर का वध किया। तो महिषासुर दूसरा दूसरा कोई नहीं है, जो जीव कृष्ण का विन्मुख है, कृष्ण का विन्मुख जीव को दग्ध करने के लिए, जो दग्ध करने के लिए जो महिषासुर है वो उनको प्रताड़ित करने के लिए महागौरी का अवतार हुआ है। और महागौरी ने आज महिषासुर का वध किया, कैसे किया? त्रिशूल से, ये तीन गुण के द्वारा, ये तीन गुण सत्वगुण रजगुण तो इनका त्रिशूल प्रतीक है, और दूसरा यह है कि आदि भौतिक आदि दैविक और आध्यात्मिक, ये तीनों क्लोश से उसको प्रताड़ित किया, उसका वध किया और देवी साम्राज्य स्थापित किया। इसलिए आज जो महिषासुर राक्षस है उनका वध हो गया, इसलिए दुर्गे दुर्गट भारी तुझे भी न संसारी, ऐसे आरती उनका गाती है कि दुर्गम है वो, ये भौतिक प्रकृति लाग करना बहुत दुर्गट है, दुर्ग है वो, किले के समान है, मतलब ये शरीर एक जेल के समान है, वो ये शरीर रूपी जेल है, बाहर पंच महाभूत का जेल है लेकिन उसके अंदर बैठा है मन रूपी जेल है, उसको पार करना बहुत कठिन है, वो महिषासुर है। ये महिषासुर को मारना ही चाहिए और इसलिए दुर्गा की सहायता की जरूरत है। इसलिए दुर्गा को हमारे हृदय में रिस्पेक्ट होना चाहिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जब साउथ इंडिया में गए थे ना, महाकाली का मंदिर देखा तो तुरंत महाकाली के मंदिर में जाओ, उन्होंने दंडवत किया। बॉम्बे में गए थे, मुंबा देवी को दंडवत किया, उनके सामने भगवान चैतन्य महाप्रभु ने नृत्य किया और दुर्गा को उनको सम्मान दिया। इसलिए हम लोगों ने भी ये भाव हमारे हृदय में रखना चाहिए कि दुर्गा कोई कठोर नहीं है, वो बहुत गुणमयी है, उनका गुण अलौकिक है, भगवान की आदि शक्ति है, उनकी सहायता मांगना चाहिए कि एक न एक दिन हमें कृष्ण का चरण कमल मिलना चाहिए। इसलिए उनके चरण कमल के प्रति प्रार्थना करना चाहिए और आज वो दिन है, वो हम आज दुर्गा के प्रति प्रार्थना कर सकते हैं और कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर भक्तवृंद की जय।